वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 27। सब लोग मेरे बात दोहराइए। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ मुझे अर्पित करते हो या दान देते हो या जो भी तपस्या करते हो उसको मुझे ही अर्पित करते हुए करो। प्रभुपाद दिखते हैं तात्पर्य में, इस प्रकार ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले, इस प्रकार बना ले कि वो किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो उसे जरूरी है कि वो कृष्ण को अर्पित भोजन के ही उच्चिष्ट के रूप में यानी प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की ये सलाह है कि इसे मुझे ही संतुष्ट करने के लिए करो, यही अर्चना है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं ये मुझे दो। इसका अर्थ यह है कि उस धन का अधिकाधिक उपयोग कृष्ण भावना को बनाने के लिए करो, उसकी उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि रखते हैं, यद्यपि इस युग के लिए ये व्यावहारिक नहीं है। तो यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जाप अपनी माला पर करे तो वो निश्चित रूप से महानतम ध्यानी और महानतम योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत् करोषि, इसका मतलब जो भी हम करते हैं। हम लोग 3 प्रकार के काम करते हैं, एक काम हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। जैसे माता अपने बच्चे को संभालती है, पिता नौकरी करता है। दूसरा काम है गलत काम जो हमको नहीं करना चाहिए, जैसे हम पाप करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, किसी को चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, मांस खाते हैं, हत्या करते हैं, वो भी कर्म कहा गया उसको, जो नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और तीसरा प्रकार का जो कर्म होता है उसको कहते हैं अकर्म, और अकर्म जो है वो केवल भगवान के लिए करते हैं। इसलिए अगर मनुष्य बनना है तो मनुष्य के लिए अकर्म करना होगा, क्योंकि कर्म और विकर्म दोनों के फल होते हैं। अच्छे कर्म के भी फल होते हैं, विकर्म के भी बुरे फल भुगतने पड़ते हैं, और दोनों कर्मों को भुगतने के लिए फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अगर बहुत पुण्य भी किए तो फिर दोबारा जन्म लेकर स्वर्ग में जाना पड़ता है और एन्जॉय करना पड़ता है, लेकिन हर जन्म में जन्म का पीड़ा, बीमारी की पीड़ा, बूढ़े होने की पीड़ा और मरने की पीड़ा सुख भोगते हुए भी मिलती है और दुख भोगते हुए भी ये मिलती रहती है। सुखी आदमी जो सुख भोगता है फिर भी उसको बुढ़ापा आता है, वो भी मर जाता है एक दिन। इसलिए मनुष्य को कर्मों और विकर्मों के चक्र से बाहर निकलना चाहिए, मनुष्य को अकर्म करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं यत् करोषि, जो भी करोगे मेरे लिए करो। कभी लगता है कि भगवान इतने गर्विष्ठ क्यों हैं, इतना घमंड क्यों है, सब मेरे लिए करो, मैं ही हूँ, यही हूँ, लेकिन वो सत्य है। अगर कोई पिताजी अपने बालक को कहे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा हाथ पकड़ के चलो, तो वो पिता का गर्व नहीं है, वो सत्य है। अगर पिता का हार छोड़ेगा मेले में बच्चा, तो मेले में गुम हो जाएगा वो। तो बार बार पिता कहेगा, देखो मेरा उंगली मत छोड़ना, मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ, मेरा उंगली छोड़ोगे तो गुम हो जाओगे। तो ये घमंड नहीं है, सत्य है ये। तो भगवान जब कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, हाँ हम ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही निर्माता हूँ, तो भगवान का अहंकार नहीं है ये। ये जो सत्य हम भूल गए हैं वो उसको बता रहे हैं। अब सोचते हैं कि हम ही भोगी हैं, हम ही ईश्वर हैं, तो भगवान कहते हैं आप नहीं हो, मैं हूँ। और बालक कहेगा पापा मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, तो पापा कहेगा बेटा ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो उसमें कोई गर्व नहीं है। तो ऐसे ही भगवान यत करोषि, आप मेरे लिए कर्म करो। क्योंकि जब तक आप खुद के लिए या खुद से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे परिवार है, समाज है, जाति है, देश है, फैमिली है, इनके लिए करते रहोगे तो अच्छा है, बुरा कुछ नहीं है, लेकिन कर्म लगेगा, उसका फल लगेगा, उसके लिए दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन परिवार के लिए भी करते समय भगवान के लिए ही समझ के करेंगे, भगवान के आनंद के लिए करेंगे परिवार का कर्तव्य, छोटे मोटे कर्तव्य भगवान के ध्यान में करेंगे, तो वही कर्म हमको अकर्म बनाकर मुक्ति दिला देंगे। यद करोशी यद अश्नाशी, कुत्ता बिल्ली पंछी भी की भोजन करना जरूरी है। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप ऐसे भोजन करोगे तो उसका भी कर्म लगता है, अगर आप शाकाहारी भी अन्न खाओगे तो उसका भी कर्म लगता है। शाकाहारी अन्न कोई पाप मुक्त नहीं है, शाकाहारी अन्न करने में भी पाप है, कर्म है उसके अंदर। तो भगवान कहते हैं कि वो ही शाकाहारी अन्न आप मुझे अर्पण करके खाओगे तो आप अन्न नहीं खाओगे, आप भगवत भक्ति अमृत खाओगे। उसके द्वारा जो भी 6 बूंदें बनेंगी खून की, वो आपके दिमाग को शुद्ध करेगी और भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल बनाएगी। इसलिए भोजन कहाँ खाना है, किसके हाथ से खाना है, कैसे खाना है, एक साइंस है। कुत्ता बिल्ली की तरह जहाँ मिले वहाँ कुछ खाना नहीं है। हम लोग शुद्ध अन्न खाते हैं और शुद्ध अन्न भी भगवान को भोग लगाकर उनके प्रसाद के रूप में ही खाते हैं, और वो भी जलेबी और गुलाब जाम और रबड़ी देखे नहीं खाते हैं। जो भी आएगा यही शाक कृष्ण आस्वादिलो, ये भगवान ने चखा हुआ अन्न है, जो भी मिलेगा उसको खा लेते हैं। और खाने के लिए जीते नहीं हैं, जीने के लिए खाते हैं, अंतर है ना उसके अंदर। तुमको केवल जीने के लिए खाना है और वो भी भगवान को भोग लगा के खाना है। यद करोशी यद अश्नाशी यद जुहोशी, यानी कि जो भी आप जुहोशी का अर्थ है जो भी आप किसी को देते हो, मेरे नाम से दो, मेरी भावना में दो। सबको कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना, बच्चों को देना पड़ता है, पड़ोसों को देना पड़ता है, कभी फॉर्मेलिटी होती है, शादी में किसको गिफ्ट देना होता है, तो कृष्ण भावना में दो, कृष्ण भावना भावित कर गिफ्ट दो। दान देना है तो कृष्ण के लिए दो, कृष्ण की वृद्धि भावना की वृद्धि हो, कृष्ण भावना की उस भावना से दो। इसलिए हम लोग जब गिफ्ट देते हैं किसी को तो सोचते हैं कैसे उनको कृष्ण को कनेक्ट किया जाए वो गिफ्ट के माध्यम से। तो यद जुहोषी, फिर कहते हैं यद तपस्यंसी, हर व्यक्ति को तपस्या करना पड़ता है। एक माँ का भी बच्चा बड़ा करने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है, नींद त्यागनी पड़ती है, भोजन त्यागना पड़ता है, कभी सुकून नहीं मिलता है, कभी आराम नहीं मिलता है। आपको नौकरी करनी है तो आपको ट्रेन लटकना पड़ता है, बारिश आंधी तूफान में जाना पड़ता है काम के लिए। हाँ, कुछ पढ़ाई करना है तो कितना सब कुछ त्याग करके रात दिन पढ़ाई करना पड़ता है, फिर एग्जाम पास होते हैं, फिर कुछ प्राप्त होता है। तो हम जीवन में जो भगवान के भक्त बिल्कुल भी नहीं बनेंगे ना, फिर सब लोग तपस्या कर रहे हैं। तपस्या यहाँ पर करना ही पड़ता है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। और गलती से हम जानवर बन जाएंगे तो इतना मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों को पता है कि आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा अभी 8 बजे और 1 बजे लंच मिलेगा और शाम को 7 बजे डिनर मिलेगा, लेकिन पंछियों को, जानवरों को, बंदरों को पता नहीं है डिनर कब मिलेगा और लंच कब मिलेगा, इसलिए वो दिन रात डिनर और लंच करते ही रहते हो, पता नहीं कब मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि यह तपस्या कौन थे, यह कि आप जो भी कर रहे हो अपने आप के लिए तपस्या, वो मेरे लिए करो, ताकि हर काम आप जो अपने लिए करते हो वो शुद्ध हो जाएगा, बंधन से मुक्त कराएगा वो। जो सब काम हम करते हैं सब हमको बंधन में बांध देते हैं, कर्म के बंधन में बांध देते हैं, कर्म के फल के बंधन में बांध देते हैं, और हम उसके लिए बार बार दुनिया में आते रहते हैं, शरीर को धारण करके जन्म मृत्यु की यातना भोगने के लिए निरंतर आना जाना यहाँ निरंतर चलते रहता है। यद तपस्यंसि कौन्तेय मत कुरुष्व यत तत् कुरुष्व मत अर्पणम, हे कौन्तेय हे अर्जुन सब कुछ मेरे लिए करो। इसमें हमारा मन में अहंकार जब होता है ना, तो हमको लगता है कि भगवान कितने अहंकारी है, मैं बार बार मैं ऐसे बोल रहे हैं। तो जब हम नम्र बन जाते हैं तो समझ जाते हैं कि ये सत्य है, ये हमारे लिए करुणावश बोल रहे हैं, उनको हम पर प्रेम है, हम पर बहुत करुणा करते हैं, वो हमको चाहते हैं, हमारा कल्याण के बारे में सोचते हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो हमारा कैंप भी इसी प्रकार होना चाहिए, यद करोशी यद अश्नाशी। जो भी आप नरसिंह की सेवा कर रहे हो वो भगवान के लिए करो, जो भी भोजन करोगे यद अश्नाशी, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। हाँ, जो भी आपको कष्ट होता है थोड़ा बहुत, यहाँ पर ठंड होती है तो दिन रात काम करना पड़ता है, भगवान के आनंद के लिए करो, भगवान के भक्तों के आनंद के लिए करो। तब जाकर आपका, जब ऐसा प्रैक्टिस करेंगे ना आप हर चीज़ का, शुरू शुरू में बहुत सोच सोच के करना पड़ेगा, बाद बाद में आदत बन जाएगी। तो जब ऐसी आदत आपको बनेगी कि सब कुछ भगवान के लिए करते हैं, जो भी सोचते हैं उनके लिए सोचते हैं, जो भी दान देते हैं उनके लिए देते हैं, जो भी अर्पण करते हैं उनको करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं उनके लिए करते हैं, ऐसा जब केंद्र स्थान में हमारे जीवन में भगवान आते हैं तो हम उनके हो जाते हैं। अभी हम सब लोग सोचेंगे ना, हम सब लोग किसके लिए काम करते हैं? अगर हम भक्त नहीं होते, पैसे के लिए काम करते हैं, जो भी करना है इसके लिए करते हैं, धन के लिए करते हैं। बस जहाँ भी जाएंगे धन धन कैसे मिलेगा ये सोचते रहते हैं, किधर भी शादी में भी जाएंगे तो भी उधर भी कुछ बिजनेस की बात है, इधर कुछ कुछ बेचना है तो कर लेते हैं उसको। जैसे होता है ना वो LIC का एजेंट, वो शादी में जाओ, एंगेजमेंट में जाओ, बार नामकरण में जाओ, सब जगह LIC का पॉलिसी किसको बेचना प्रयास करते रहता है वो। इसका फोकस है उसके ऊपर कि मुझे बनाना है इस पॉलिसी को, लोगों को देना है। वैसे भक्त भी वैसे ही होना चाहिए, जहाँ भी जाएगा वो भगवान के लिए काम करता है और भगवान के लिए उसको काम करना चाहिए, तो कैसा ज़िंदगी आसान हो जाती है। इतनी पीड़ाएँ हम लोग भोगते हैं ना, ना कष्ट भोगते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स बदलते जा रहा है, समाज बदलते जा रहा है, समय का प्रभाव बदलते जा रहा है, दुख कष्ट बढ़ रहे हैं, कोई कलयुग में दुख कष्ट मिट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ऐसे दुख भरे ज़िंदगी में सबको अपना अपना काम संभालना है ना, दो वक्त रोटी कमानी है और थोड़ा बहुत सुख प्राप्त करना है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे कहते थे कि पिछले त्रेता युग में, द्वापर युग में 4 महीने केवल दिन में 4-5 घंटा काम करने से पेट भर जाता था और 8 महीने लोग भजन करते थे भगवान का। और ये भारत में कलयुग में भी यही था कुछ समय पहले, 4 महीने मेहनत करो बारिश के, 8 महीना पूरा भजन सत्संग करते रहो। लेकिन आज उसी 2 वक्त की रोटी के लिए 12-12, 15-15 घंटा काम करना पड़ता है, फिर भी पर्याप्त नहीं होता है, और काम करने का कुछ पार्ट टाइम कुछ ये कुछ करने का प्रयास करता है। इतने कष्ट के जीवन में अगर कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं और हम उनको केंद्र स्थान में रखते हैं, बनाते हैं कि केंद्र स्थान में आप रहो भगवान, हमारा स्वार्थ न रहे, तो उस कष्टमय वातावरण में भी हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। तो भक्ति करना परमार्थ है, लेकिन परम स्वार्थ भी है वो, क्योंकि पहले स्वार्थ पूर्ति होती है, बाद में परमार्थ होता है। तो परमार्थ करने से स्वार्थ की और लोगों के कल्याण के दोनों की पूर्ति होती है। स्वार्थ से केवल खुद की पूर्ति होती है, परमार्थ नहीं होता है। लेकिन परमार्थ ये ऑल एंड कंपासिव, ऐसा मत समझना कि जब हम परमार्थ करेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर हम भगवान को अर्पण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। नहीं, भगवान नज़रों से खाते हैं, बाकी सब आपको देते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, पूरा गोवर्धन का भोग खा लिया उन्होंने, 2 मिनट में वापस कर दिया, सबको बंटवा दिया, सबके भंडार भर दिए वापस एक बार। तो भगवान को देने से किसी की कमी नहीं होती है, चिंता की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, अगर जन्माष्टमी को इतना दान दिया तो फिर बच्चों का फीस कहाँ से भरूंगा, कभी कमी नहीं होती है जो भगवान के लिए देता है। भगवान को देना ये बड़े स्वार्थ की बात है, भगवान को देना मतलब 1 रुपया देंगे तो भगवान 10 गुना देंगे आपको वापस। तो भक्त जो है सोचता है कि भक्ति में खुद का स्वार्थ सबसे पहले निहित है उसके अंदर, और साथ साथ अनंत लोगों का कल्याण भी उसमें निहित हो जाता है। भक्ति का कार्य जो है ना वो ऑल एनकम्पासिंग मतलब सर्वव्यापी है, वो सबको उसमें इंक्लूड कर लेता है वो। तो इसलिए भगवान के लिए बताए गए हर एक शब्द जो है ना वो हमारे लिए कल्याणकारी है। भगवान फिर उससे, हम गुलाब जाम खिला रहे हैं कि लड्डू खिला रहे हैं कि जलेबी खिला रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है आपके गुलाब जाम की और लड्डू की। कौन खाएगा पृथ्वी के लड्डू गुलाब जाम? तो गौलोक के पकवान खाते हैं वो भी लक्ष्मियों के, रुक्मिणी के और राधा रानी के हाथ से खाते हैं। यहाँ के क्या ज़रूरत है उनको पापी लोगों के हाथ से खाने की? लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बनाएं उसको, हमारे शरीर को चलाने के लिए उसको बनाएं और उनको अर्पण करें, उनके आनंद के लिए ही बनाएं, उनको ध्यान रख के ही बनाएं। हमको ध्यान में रखे आज मेरे को जलेबी खाने की इच्छा है तो जलेबी बनाओ और भगवान को भोग लगाओ, ये भी ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जाकर उन्हीं के लिए बनाओ, उनको क्या अच्छा लगता है, और उनका प्रसाद ही केवल पाओ, जो मिलेगा वो पाओ धन्यवाद करके, ये सबसे बड़ी चेतना है। ऐसे व्यक्ति को भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम, उनका हर क्षेम हर कुशल वो संभालते हैं। हमको ऐसा रहना है ज़िंदगी में, निश्चिंत होकर रहना है, कोई हमारे जीवन में ऐसा किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्या होगा भक्ति में जाऊंगा तो फिर धंधा होगा कि नहीं होगा, सब ध्यान भगवान में रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, विरक्त हो जाऊंगा। हमारे हॉस्पिटल में बहुत डॉक्टर्स ऐसे हैं, सब उनको पता है, सब उनको मालूम है कि ये बढ़िया काम है, लेकिन फिर भी लिफ्ट की ओर खड़े रहकर प्रार्थना सुनते हैं, अंदर नहीं आते हैं। और फिर हमको पता चला कि उनको ये डर है कि कहीं ना हम पूरी तरह समर्पित हो गए तो धन कहाँ से आएगा, शायद धन कम हो जाएगा, ऐसा उनको डर लगता है, इसलिए वो अंदर नहीं आना चाहते, कहीं अंदर खींच लिए गए एकदम और विरक्त हो गए तो फिर क्या होगा, इतना धन रोज लाखों रुपए कमा रहा हूँ उसका क्या होगा। लेकिन ये अज्ञान है, ये माया का प्रभाव में बना हुआ अज्ञान है। भगवान को देने से या भगवान के लिए कुछ करने से जिंदगी में कभी भी कुछ कमी नहीं होती है। भगवान वो बनिया नहीं है कि आपको चूसता रहे हमेशा, आपसे सब लेता रहे, आपको कुछ न दें, वो बनिया होता है, बनिया भगवान बनिया नहीं है, भगवान तो देने वाले हैं, सबसे बड़े दाता भगवान हैं। आपने कुछ भी उनको नहीं दिया ना, फिर भी आपको हवा दे रहे, पानी दे रहे, भोजन दे रहे, रहने को इंतजाम कर रहे हैं, और गर्मी में कपड़े भी दे रहे हैं और घर भी दे रहे हैं आपको। जो इतने बड़े बड़े गुंडे आतंकवादी रहते हैं उनको नहीं खिलाते क्या भगवान, सबको खिलाते हैं तो भक्तों को नहीं खिलाएंगे। और इतने जानवरों को, हाथी जो है ना वो एक बार को खाना खाता है ना, आपका महीना भर का खाना वो एक ही बार खा जाता है, खाता है कि नहीं, लेकिन वो क्या भूखा मरता है क्या, जिंदगी इतने हाथी पैदा होते हैं सब मर जाते हैं। तो जो हाथी को भी खिलाता है, चींटी को भी खिलाता है, सिंह को भी खिलाता है, और शेर को भी खिलाता है, और मनुष्य को भी खिलाता है, जो गुनहगार है उसको भी खिलाता है, जेल में जब डालते हैं आपको तो खाना नहीं खिलाते, खाना मिलता है भगवान की दया से। तो ऐसे भगवान जो इतने पापियों को, जानवरों को और निचली योनियों के जीवों को खिला रहे हैं, वो हमको नहीं खिलाएंगे, उनको अर्पण करेंगे तो भूखे रह जाएंगे, ये तो मूर्खता है सोचने के बाद। जैसे हमारे पिताजी होते हैं, कोई बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है, कोई पढ़ाई करता ही नहीं है, बार बार फेल होता है, खाली गुल्ली डंडा ही खेलते रहता है, टाइम पास ही करते रहता है, तो क्या उसको भूखा रखते हैं, दोनों को खिलाते हैं, और वैसे गुलाब जाम बना तो दोनों को एक खिलाते हैं, ऐसा नहीं कहते कि तूने अच्छे मार्क लाए ये चार खाओ, तुमने कम मार्क मिले एक ही खाओ, ऐसा नहीं होता है। पिता की दया होती है ना वो समान होती है, वो डांटेगा आपको, लेकिन उसकी दया करुणा प्रेम सबके लिए समान होता है। समोहम सर्वभूतेषु, सब भूत जीवों के लिए मैं समान हूँ, तुमको कभी भी डरना नहीं चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति होगा ना तो भी उसको देने में भगवान को डरना नहीं चाहिए। कुछ बोलेंगे अरे आप तो अमीर हो, आपको लोगों को दान करना चाहिए, हम लोग क्या दान करेंगे, आप यहाँ पर आइए, आप देखिए शिव जी के मंदिर में जाइए, गिरिराज में जाइए, गरीब से गरीब गुजर जो राजस्थान से आते हैं, एकदम गरीब से गरीब खुद डालते हैं चरण चवन्नी, और बच्चे के हाथ में चवन्नी देते हैं, बोले बेटा तू भी डाल, उसको भी सिखाते हैं कि देना चाहिए, चवन्नी हो या 40 रुपया हो 400 रुपया हो, लेकिन देने की आदत होनी चाहिए, कितना दे रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ, मैं नंदगांव में देखता हूँ, एक मौसम होता है जब सब राजस्थान के लोग फसल काट के दर्शन करने को आते हैं, एकदम गरीब, कपड़े इतने फटे पुराने, बच्चे उनके बूढ़े बूढ़े आते हैं, और 10 पैसे, अभी तो 10 पैसे बचे ही नहीं, लेकिन 4 आने 8 आने 1 रुपया डालते रहते हैं, क्या उस पर क्या होता है, ठाकुर जी का भोग बनता है उससे, लेकिन वो दे रहे हैं, ठाकुर जी जो भी है हमको देना है आपको, ये भाव इम्पोर्टेंट है, कितना दे रहे हो उन, कितना दोगे आप उनको, अरे टूटे हुए कंगन से लक्ष्मी के पूरा विश्व का इकोनॉमिक्स चल रहा है, टूटे हुए कंगन से, हमारे चवन्नी से क्या होगा हमारे 5,000 रुपये से क्या होगा, उनके लिए वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप दे रहे हो उसको देख रहे हैं, वो कि दे रहे हैं, देना चाहते हैं, देने की भावना है, दानत है इनके अंदर। तो इसलिए ये मत समझना कि अरे हम तो क्या आप गरीब है सर, हम वार्ड बॉय हैं, हम तो ये है फलाना है, हमारे पास पैसा नहीं है, कर्जा है, हम क्या देंगे, देने की आदत रखो, 10 रुपये दो, 5 रुपये दो, लेकिन दो जन्माष्टमी में भगवान के उत्सव में सहयोग करो, और भगवान को जितना देते हो उसमें कभी कभी कमी नहीं आती, कभी नहीं आती है, हमारा खुद का अनुभव है, देते जाओ कभी भंडार कम नहीं होंगे। अरे ग्वाल बालों ने जब गोवर्धन की पूजा हुई थी ना, जितना सामान भरा था घर में तो सालों के लिए पर्याप्त था, सारा दे दिया, अभी अगला डिनर कहाँ से बनेगा वो पता नहीं था उनको, सारा लगा दिया, 2.5 किलोमीटर की जगह है वो, दान निवर्तन कुंड से लेकर आने और तक पूरा रास्ते में 1 इंच की जगह भी नहीं है बीच में, इतने भोग लगाए हुए पहाड़ जैसे, ऐसे हौद बनाए थे ड्रिंक्स के और व्यंजनों के पहाड़ बनाए थे। लेकिन जब उत्सव समाप्त हो गया और सब बाल बाल घर पे गए तो क्या हुआ, भंडार खाली मिले उनको, सारे भंडार भरे हुए थे और खुद भी पेट भर के खा के आए, कहीं कहीं कमी नहीं हुई। वो फल वाले ने फल दे दिए, वो एक बार नहीं दी, आप आगे पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा वो दोबारा घर पे गई, वो 3 बार घर पे गई, 3 दिन तक आते रही और अपने फल देते रही, बालक के सौंदर्य से इतने मोहित हो गई वो, सारे फल देती रही। 3रे दिन के बाद में देखा टोकरी में पूरे जेवर भरे हुए थे उसके, तो भगवान ने कहा फ्री में फल लिए उसके, इतने छोटे कीमत के फूल फल दिए, वो माला माल कर दिया भगवान ने उसको। अरे भगवान हम किसको दे रहे हैं सोचो आप, किस व्यक्ति के साथ डीलिंग कर रहे हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सबको देने वाला है, आपको जिंदगी दिया है, आपको भाव दिया है, आपको प्रेम दिया है, आपको बुद्धि दिया है, शरीर दिया है, हर कुछ चीज़ आपको उसने दिया है, तो हमको देने की आदत डालनी चाहिए। यद ददासी, ददासी यत, उनको दे दो, ये जीवन के मनुष्य जीवन की मनुष्य बनने की शुरुआत आई है जब हम भगवान को देना शुरू कर देते हैं, तब तक अपने को ही देते रहते हैं, अपने को ही लेते रहते हैं। इसलिए ये जीवन जो है ना, ये बहुत कीमती जीवन है, इसमें ऐसे भगवद गीता के दिव्य विचार जो है वो ग्रहण करना, ये हमारी दौलत है, इट्स इज आवर वेल्थ, उसको जब ग्रहण करोगे तो हमारा जीवन बहुत पवित्र और बहुत परमोच्च हो जाएगा हर दृष्टि से, धन की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से, आनंद की और सुख की दृष्टि से, शरीर के सुख की दृष्टि से, हर चीज़ से आप समृद्ध हो जाओगे, कोई कमी नहीं रहेगी। ये मत समझना कि अरे खाली आध्यात्मिक की बुद्धि होगी, बाकी क्या होगा, बाकी अपने भोग का क्या है, हमारे भोग का क्या हो गया, ऐसा नहीं होता है। भगवान योगक्षेमम वहाम्यम का मतलब है आपको जो ज़रूरी है वो देंगे और जो आपके पास कमी है वो दे देंगे, जो आपके पास है उसको बनाए रखेंगे, कहीं भी आपको टूटने नहीं देंगे, आपका स्थिरता जो है ना वो आध्यात्मिक को ख़त्म नहीं करेंगे, उसको बनाए रखेंगे, क्योंकि हमसे अधिक हमारी जो चिंता है वो भगवान को है, जितना चिंता हम अपने लिए स्वार्थ से करते हैं उससे भी अधिक चिंता भगवान करते हैं, जितना चिंता बालक अपने जीवन के लिए करता है उससे अधिक चिंता पिता उसके जीवन के लिए करता है, करता है कि नहीं करता है। तो उसी प्रकार से हमारे परम भगवान हमारे परम पिता हैं, वो हमसे ज़्यादा हमारी चिंता करते हैं, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। भगवान बार बार गीता में कहते हैं डरो मत, माँ शुचः आई एम देयर विथ यू, मैं आपके साथ में हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।